वैशंपायन जी कहने लगे, राजन जब युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र पुत्र युधिष्ठिर जब युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को विदा किया तो वे लज्जा से मुख नीचा किए हृदय में कुड़ता कुड़ता चतुरंगिणी सेना सहित वहां से हस्तिनापुर को चला। मार्ग में एक रमणीक स्थान था जहां खूब जल था और घास थी, वहां पर वो बैठ गया। कर्ण ने आकर कहा, दुर्योधन महाराज आज आपको बहुत बधाई है, बड़ा सौभाग्य है, आपका जीवन बच गया और आज हम दोनों खुशी खुशी प्रेम से मिल रहे हैं। मुझे तो आपके सामने गंधर्वों ने ऐसा तंग कर दिया, मैं उनकी बाणों से पीड़ित हुआ सेना को भी नहीं संभाल सका। अंत में जब नाक में दम आ गया तो वहां से भागना ही पड़ गया। उस अतिमानुष चित्रसेन ने युद्ध से आप रानियों सहित सबको ले गया, पर अच्छा हुआ आप सब लोग वापिस आ गए, किसी प्रकार का घाव आदि आपको नहीं लगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, इस समय अपने भाइयों सहित आपने युद्ध में जो काम करके दिखाया ऐसा संसार में दूसरा कौन दिखा सकता है। कर्ण की इस प्रकार कहने पर राजा दुर्योधन ने गदगद कंठ होकर कहा, राधे तुम्हें असली भेद का पता नहीं है, इसी से मैं तुम्हारे कथन को बुरा नहीं मान रहा हूं। तुम तो यही समझते हो ना कि गंधर्वों को मैंने अपने पराक्रम से हराया है। नहीं तो फिर क्या कहूं, क्या बात बोलो दुर्योधन, ऐसे नीचा मुख किए हुए विजय की अवस्था में एक हारे हुए व्यक्ति की तरह मुंह लटकाए बैठे हो, सिर हिला रहे हो, रो रहे हो, क्या बात है? लड़खड़ाते शब्दों से दुर्योधन ने कहा, कर्ण सच्ची बात तो यह है कि मेरे और मेरे भाइयों के साथ गंधर्वों ने बहुत देर तक युद्ध किया, दोनों ओर की बहुत हानियां हुई, किंतु जब वो माया से युद्ध करने लगा तो हम उसके सामने टिक नहीं सके, हमारी हार हो गई और गंधर्वों ने हमें सेवक मंत्री पुत्र स्त्री सेना सवारियों सहित कैद कर लिया। फिर वे हमें आकाश मार्ग से ऊपर ले गए। उस समय हमारे कुछ सैनिक और मंत्रियों ने पांडवों के पास जाकर कहा, गंधर्व लोग धृतराष्ट्र कुमार राजा दुर्योधन को उनके भाई और स्त्रियों से पकड़कर ले जा रहे हैं, इस समय आप आइए और उन्हें छुड़ाइए। तब धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों को समझाकर हमें बंधन से छुड़ाने के लिए आज्ञा दी। पांडव लोग उस रथ पर आए और गंधर्वों को हराने की शक्ति रखते हुए उन्होंने समझाकर शांतिपूर्वक छोड़ देने का प्रस्ताव किया, किंतु हमें छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। इस पर भीमसेन अर्जुन नकुल और सहदेव क्या बाणों की वर्षा करने लगे। गंधर्व लोग रणभूमि छोड़कर हमें घसीटते हुए आकाश में चढ़ने लगे। उस समय मैंने आंख उठा के देखा तो सब ओर से बाणों के जाल से आकाश को घेर लिया, और वो मैंने नीचे देखा तो अर्जुन क्या बाणों की वर्षा कर रहा है। कर्ण बाणों को नीचे तो बहुत तेजी से बरसात में कर सकते हैं, आकाश में ऐसी वर्षा कर रहे हैं और बाण वहां टिके हुए हैं। सारी दिशाएं रुंध गई। अर्जुन के मित्र चित्रसेन ने अपना रूप प्रकट कर दिया। फिर दोनों मित्र आपस में मिले, क्या उनकी प्रेम भरी बातें हुई है। अर्जुन को अपने गले लगाकर चित्रसेन खूब रोए और अर्जुन भी चित्रसेन से मिलकर बड़ा प्रेम दिखाए। कारण फिर शत्रु दमन अर्जुन ने हंसते हंसते उत्साहपूर्वक कहा, चित्रसेन आप मेरे भाइयों को छोड़ दीजिए। पांडवों के जीवित रहते हुए हमारे सामने इनका तिरस्कार हो, ये हमें कभी सहन नहीं होगा। महात्मा अर्जुन के इस प्रकार कहने पर गंधर्वराज चित्रसेन ने बताया कि अरे, हम लोग पांडवों को उनकी स्त्री सहित इस दुर्दशा को देखने के लिए वहां गए थे। चित्रसेन ने जब ये शब्द कहे तो मैं इतना लज्जित हुआ कि वास्तव में बात तो यही थी, आया तो चिढ़ाने के लिए था। मैं नीचे जमीन पर देखने लगा, यदि जमीन फट जाती तो मैं उसके अंदर चला जाता। जमीन फटी नहीं और मैं अंदर गया नहीं। फिर पांडवों सहित गंधर्वों ने युधिष्ठिर के पास जाकर हमको कैदी जैसी हालत में लाकर खड़ा किया और उन्हें भी हमारा खोटा खोटा समाचार सुनाया कि ये द्रौपदी को इस अवस्था में देखने के लिए सब स्त्रियों को लाए थे और देखो कितनी स्त्रियां सुसज्जित द्रौपदी को चिढ़ाने के लिए, और स्वयं भी कितने अच्छे ठाट बाट के साथ आए आप लोगों को चिढ़ाने के लिए, सब बातें सुना रहे थे। मैं दीनहीन अवस्था में नीचा मुख किए हुए था और युधिष्ठिर के सामने एक अपराधी के समान खड़ा था। कर्ण, इससे बड़ा मेरे लिए क्या दुख हो सकता है? जिनका मैंने सर्वदा निरादर किया, जिनको मैंने सदा शत्रु माना, उन्होंने मुझ मंदमति को बंधन से छुड़ाया और जीवन दान दिया। हो वीर, इसकी अपेक्षा तो यदि संग्राम में मैं मर जाता तो बड़ा अच्छा होता। इस प्रकार का जीना किस काम का? आज पांडवों के सामने मैं कुछ बोलने के लिए नहीं रहा। जब भी भीम मिलेगा तो यही कहेगा, दुर्योधन तुम वही हो ना? अर्जुन कहेगा, दुर्योधन हमने तुमको छुड़ाया है, याद करो उस दिन को। क्या जवाब दूंगा? यदि गंधर्व मुझे मार डालते तो संसार में मेरा यश फैलता, इंद्रलोक में मेरी अक्षय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती। अब मेरा जो विचार दूसरा ही है, सुनो कर्ण, मैं हस्तिनापुर नहीं जाऊंगा। किस मुंह से जाऊं? मैं इसी घोर वन में अन्न जल का त्याग करके प्राण त्यागूंगा। तुम और दुशासन आदि सब भाई हस्तिनापुर चले जाओ। अब मैं तो हस्तिनापुर जाने लायक नहा नहीं। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विदुर, संजय, वाल्लिक, भूरिश्रवा, दूसरे बड़े बूढ़े और उदासीन वृत्ति वाले प्रधान प्रधान ब्राह्मण मुझसे क्या कहेंगे और मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? ऐसे जीने से मरना अच्छा है। कारण, अब मुझे समझ में आया है कि मृत्यु कितनी सुख देने वाली होती है और जीवन कितना कष्ट देने वाला होता है। इस प्रकार दुर्योधन कहते कहते रो पड़ा, चिंताग्रस्त हो गया, तड़पने से लगा। दुशासन ने कहा, भैया दुर्योधन, जरा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें राज्य देता हूं, इसे स्वीकार करके तुम मेरी जगह राजा बनो और कर्ण तथा शकुनी की सलाह से इस समृद्धिशाली पृथ्वी का शासन करो। दुर्योधन की यह बात सुनकर दुर्योधन ने दुशासन से कहा, दुशासन अब तुम राज्य करो, मेरी जगह तुम राजा बनो, कर्ण और शकुनी की सलाह से इस पृथ्वी का शासन करो। मैं अब हस्तिनापुर नहीं जाऊंगा, अन्न जल का त्याग करके यहीं प्राण त्याग करूंगा। दुशासन का गला दुख से भर गया। उसने दुर्योधन के चरणों में सिर रखते हुए रोकर कहा, महाराज ऐसा कैसे बोलते हो? सारी भूमि फट जाए, सूर्य अपने तेज को और चंद्रमा अपनी शीतलता को त्याग दे, हिमालय अपने स्थान को छोड़ दे, अग्नि और अग्नि उष्णता का त्याग कर दे तो भी आपके बिना मैं पृथ्वी का शासन नहीं कर सकूंगा, बस आप प्रसन्न होइए। ऐसा कहकर दुशासन ने दोनों हाथों से अपने बड़े भाई के चरण पकड़ लिए और ठाठ मारकर रोने लगा। दुर्योधन और दुशासन को अत्यंत दुखी देखकर कर्ण को भी बड़ी व्यथा हुई। उसने कहा, मैंने आप लोगों की बातें सुन ली। कर्ण बोलता है, आप दोनों व्यर्थ में दुख पा रहे हो, क्यों शोक करते हो? ये प्रसन्नता का अवसर है, आप शोक करते हो? शोक करने वालों का शोक तो कभी दूर नहीं होता। धैर्य धारण करो, इस प्रकार शोक करके शत्रुओं का हर्ष मत बढ़ाओ। पांडवों ने आपको गंधर्वों के हाथ से छुड़ाया, ऐसा करके कोई एहसान नहीं किया है। ये पांडवों का कर्तव्य था। पांडव आपके सेवक हैं, आपके दास हैं, जिन्होंने भरी सभा में आपकी दासता स्वीकार की। क्या सेवक और दास का ही कर्तव्य नहीं होता कि वे अपने स्वामी के लिए युद्ध करें, लड़े, झगड़े और उनकी हर प्रकार से रक्षा करें? राज्य के भीतर रहने वाले पुरुषों को सर्वदा राजा का प्रिय कार्य करना चाहिए। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि आपको संताप हो। देखिए, आप प्रायोपवेश के विचार को सुनकर आपके सभी भाई उदास हो रहे हैं। इसलिए इस संकल्प को छोड़िए, खड़े होइए, भाइयों को ढाढ़स दीजिए। यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो भी मैं आपके चरणों की सेवा में रहूंगा, लेकिन आपके बिना मैं भी जीवित नहीं रह सकता। तब सबल पुत्र शकुनी ने दुर्योधन को समझाते हुए कहा, दुर्योधन, कर्ण ने जो यथार्थ बात कही है उसके एक एक शब्द पर विचार करो। फिर मैंने तुम्हें जो समृद्धिशालिनी राजलक्ष्मी पांडवों से छीन कर दी है उसे तुम इस प्रकार अज्ञानवश मत खो। तुम आज मूर्खता से अपने प्राण त्यागने को तैयार हो, अथवा मेरे विचार से तुमने कभी बड़े बूढ़ों की सेवा नहीं की, इसी से तुम्हारे मन में उल्टी उल्टी बातें आती हैं? यह तो आज हर्ष की बात है, तुम्हें इसके लिए पांडवों का सत्कार करना चाहिए और तुम शोक कर रहे हो। तुम्हारा ये काम तो उल्टा ही उल्टा है। तुम उदासी छोड़ो, पांडवों ने तुम्हारे साथ जो उपकार किया है उसे स्मरण करके उन्हें उनका राज्य दे दो। इससे तुम यश और धर्म को प्राप्त होगे और ऐसा करने से तुम कृतज्ञ माने जाओगे और पांडवों का दिया पांडवों को राज्य दे दोगे तो पांडवों का तुम्हारे पर ऋण भी नहीं रहेगा। पांडव कहेंगे, हमने तुमको बचाया, तो तुम गर्व के साथ कहोगे कि हमने भी तुमको राज्य दिया। इस प्रकार दुर्योधन को उनके सुहृद, मंत्री, भाई, बंधु सभी ने बहुतेरा समझाया, परंतु वो निश्चय से नहीं डिगा। उसने कुश और वलकल के वस्त्र धारण कर लिए, स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा से वाणी का संयम कर उपवास के नियमों का पालन करने लगा। इधर दुर्योधन को प्रायोपवेश करते देखकर देवताओं से पराजित पाताल निवासी दैत्य और दानवों ने विचार किया कि ये दुर्योधन हमारा ही एक अंश है जो पृथ्वी पर धृतराष्ट्र का बेटा बनकर आया है और अपने सब भाइयों के साथ हमारा ही काम कर रहा है। अब कहीं हमारा पक्ष गिर जाएगा तो यहां कौन काम करेगा हमारा? कितनी रहस्य की बात है ये। ये दानव और दैत्यों का स्वरूप था दुर्योधन। हमारा पक्ष गिर जाएगा, इसलिए उन्होंने उसे अपने पास बुलाने के लिए बृहस्पति और शुक्र के बताए हुए अथर्व वेदोक्त मंत्रों द्वारा औपनिषद कर्मकांड आरंभ किया। वेद वेदांग में निष्णात ब्रह्मलोक ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चारण पूर्वक अग्नि में घी और दूध की आहुति देने लगे। ये ब्राह्मण की इन्हीं के भेजे हुए, इनको कहा कि तुम वेद के वो सूक्त पढ़ो। कर्म समाप्त होने पर यज्ञ कुंड में एक बड़ी अद्भुत बात देखी गई। वो क्या कि वहां एक कृत्या यूं जम्बाई लेते हुए प्रकट हुई। अरे जम्बाई उबासी, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा काम करूं? तब दैत्यों ने प्रसन्न होकर कहा, तुम प्रायोपवेश करते हुए राजा दुर्योधन के वहां चले जाओ। कृत्या ने कहा, जो आज्ञा। अब वो तो मायावी थी, एक क्षण में दुर्योधन के पास पहुंच गई। फिर एक क्षण में ही उस दुर्योधन को लेकर पताल पहुंच गई। दुर्योधन को आया देखकर दानवों के चित्त में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उससे अभिमान पूर्वक कहा, हे भरत कुल दीपक महाराज दुर्योधन, आपके पास सदा ही बड़े बड़े शूरवीर और महात्मा बने रहते हैं, फिर आपने ये प्रायोपवेश का साहस क्यों किया? जो पुरुष आत्महत्या करता है वो अधोगति को प्राप्त होता है और लोक में उसकी निंदा होती है। आपका ये विचार तो धर्म और अर्थ तथा सुख का नाश करने वाला है, इसे आप छोड़ दीजिए। आप शोक क्यों करते हैं? क्या हो गया? आपके लिए अब किसी प्रकार का खटका नहीं है। आपकी सहायता के लिए अनेकों दानव पृथ्वी पर उत्पन्न हो चुके हैं। कुछ दूसरे दैत्य भीष्म द्रोण और कृपाचार्य के शरीरों में प्रवेश करेंगे, जिससे वे दया और स्नेह को तिलांजलि देकर आपके शत्रुओं से युद्ध करेंगे। इनके सिवा क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुए और भी अनेकों दैत्य और दानव आपके शत्रुओं के साथ युद्ध में पूरे पराक्रम से भिड़ जाएंगे। महारथी कर्ण, अर्जुन तथा और भी सभी शत्रुओं को परास्त महारथी कर्ण अर्जुन को तथा और सभी शत्रुओं को परास्त कर देगा। इस काम के लिए हमने संसप्तक नाम के सहस्रों दैत्य और राक्षसों को नियुक्त कर दिया है। हमें सब पता है अर्जुन स्वर्ग में जा जाकर क्या शक्ति प्राप्त किए हैं। हम अपनी शक्ति से आप लोगों को पुष्ट करते हैं, देखते हैं देवता लोगों की शक्ति हमारे सामने कितना काम करती है। ये सुप्रसिद्ध वीर अर्जुन को नष्ट कर डालेंगे, शोक न करें। अब आप ये समझिए कि ये पृथ्वी शत्रुओं रहित हो चुकी है, निर्द्वंद होकर रहिए। देखिए देवताओं ने पांडवों का आश्रय ले रखा है और आप सर्वदा हमारी गति हैं। इस प्रकार दुर्योधन को उपदेश देकर उन्होंने कहा, आप अपने घर जाइए और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। दैत्यों की विदा करने पर कृत्या ने दुर्योधन को फिर उसी क्षण प्रायोपवेश के स्थान पर पहुंचा दिया और वह वहीं अंतर्ध्यान हो गई। कृत्या के चले जाने पर दुर्योधन को चेत हुआ, उसने इस सारे प्रसंग को स्वप्न सा समझा। दूसरे दिन सवेरा हुआ, सूत पुत्र कर्ण ने हाथ जोड़कर हंसते हुए कहा, महाराज मरकर कोई आदमी शत्रुओं को जीतता है या जीता हुआ रहकर शत्रुओं को मारता है? समझिए, मरने से क्या होगा? जीते रहोगे तो पांडवों को जीतोगे, मरने से क्या होगा? मरने से तो मर गए। जो आदमी जीता है वही सुख के दिन देखता है। क्यों शोक कर रहे हैं? शोक की बात क्या है? एक बार अपने पराक्रम से शत्रुओं को संतप्त करके अब मरना क्यों चाहते हो? अच्छा अच्छा, आपको अर्जुन के पराक्रम का भय बैठ गया है। यदि ऐसा है तो मैं आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि मैं उसे संग्राम में मार डालूंगा। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक शस्त्र छूकर कहता हूं, अज्ञात वास का जब 13वां वर्ष व्यतीत होगा तो व्यतीत होते ही उन सबको मैं अपने अधीन कर लूंगा। कर्ण के इस प्रकार कहने और दुशासन आदि के बहुत अनुनय विनय करने पर उसको दैत्यों की बात याद आ गई। और दुर्योधन अपने आसन से खड़ा हो गया। उसने पांडवों के साथ युद्ध करने का विचार कर लिया और फिर हस्तिनापुर चलने के लिए रथ हाथी घोड़े पदातियों से युक्त चतुरंगिणी सेना को तैयार करने की आज्ञा दी। कहा हम हस्तिनापुर चलेंगे। सब लोग बड़े खुश हो गए और वो विशाल वाहिनी सज धज कर गंगा के प्रवाह के समान चलने लगी और चलते चलते वो हस्तिनापुर पहुंच गई। जन्मेजय ने पूछा, कृपा करके ये बताइए कि जिस समय महामना पांडव गण द्वैत वन में रहते थे उस समय हस्तिनापुर में महाधनुर्धर धृतराष्ट्र पुत्र सूत पुत्र कर्ण महाबली शकुनी भीष्म द्रोण और कृपाचार्य ये क्या करते थे। वैशंपायन जी बोले, राजन दुर्योधन के लौट आने पर पितामह भीष्म ने उससे कहा, वत्स जब तुम द्वैतवन को जाने के लिए तैयार हुए थे उसी समय मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हारा वहां जाना अच्छा मालूम नहीं देता, किंतु फिर भी तुम चले गए। वहां शत्रुओं के हाथ से तुम्हें बंधन में पड़ना पड़ा और फिर धर्मज्ञ पांडवों ने तुम्हें उनसे छुड़ाया। दुर्योधन तुम्हें शर्म नहीं आई? देखो उस समय सारी सेना तुम्हारे भी सामने ये सूत पुत्र गंधर्वों से डर कर भाग गया। उस समय तुमने महात्मा पांडव और दुष्ट बुद्धि कर्ण का पराक्रम भी देखा होगा ना। ये कर्ण तो धनुर्वेद शूरवीरता और धर्म में पांडवों के चौथाई हिस्से के बराबर भी नहीं है। इसके सहारे से तुम इस कुल को नाश करना चाहते हो? अभी भी समय है दुर्योधन, इस कुल की वृद्धि के लिए मैं तो पांडवों के साथ संधि कर लेना अच्छा समझता हूं। तुम्हारे मन में भी संधि की बात बैठनी चाहिए। भीष्म की बात सुनकर राजा दुर्योधन हंसकर शकुनी के साथ चल दिए। देखो ये हंसी है ना, ये कैसी हंसी थी, ऐसे ये हंसना बहुत तिरस्कार होता है। ये तो हंसी है साहब, अब लिखने में तो यही आएगा कि हंसी, लेकिन इसका जो टोन है इसका जो तरीका है घोर अपमान का तरीका था। जब दुर्योधन शकुनी के साथ हंस करके भीष्म पिताओं को देखकर चले गए तो कर्ण दुशासन भी उनके पीछे पीछे चले गए। भीष्म की पूरी बात सुने बिना ही जाते देखकर भीष्म जी को बहुत बुरा लगा, वे अपने घर को चल दिए। धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन फिर उसी जगह आकर अपने मंत्रियों से सलाह करने लगा, हमारा हित किस प्रकार हो, हमें क्या करना चाहिए। कर्ण ने कहा, राजन सुनिए, मैं एक बात कहता हूं, भीष्म सदाई हमारी निंदा करते फिरते रहते हैं, जब भी देखो पांडवों की प्रशंसा करते हैं। क्या हमने एक भी काम ऐसा नहीं किया जिसमें कभी हमारी प्रशंसा इन्होंने की? आपसे द्वेष करने के कारण उनका मेरे प्रति भी द्वेष हो गया है और आपके आगे वे मेरी तरह तरह से निंदा करते हैं। मैं भीष्म के ये शब्द सहन नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी एक योद्धा हूं। आप मुझे सेवक सेना सवारी देकर पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के लिए दे दीजिए, आपकी अवश्य विजय होगी। मैं शस्त्रों की शपथ करके सच्ची प्रतिज्ञा करता हूं। दुर्योधन ने कहा, वीर कर्ण तुम सदाई मेरा हित करने के लिए तैयार रहते हो, यदि तुम्हें निश्चय है कि मैं अपने सारे शत्रुओं को परास्त कर दूंगा तो तुम जाओ मेरे मन को शांत करो। अर्जुन दिग्विजय की यात्रा के लिए आवश्यक चीजें लेकर रवाना हो गए। फिर अच्छा मुहूर्त मांगलिक द्रव्यों से स्नान करके पवित्र तिथि में कूच किया, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया और रथ की घरघराहट से तीनों लोग गूंज उठे। हस्तिनापुर से बड़ी भारी सेना साथ में लेकर महाधनुर्धर कर्ण राजा द्रुपद की राजधानी को घेरा और बड़ा युद्ध करके द्रुपद को अपना आश्रित बना लिया उससे कर रूप से उसने बहुत सा सोना चांदी तरह तरह के रत्न प्राप्त किए। उसके बाद राजा द्रुपद के अधीन जो राजा थे उनको जीत लिया, उत्तर दिशा में गया, वहां के राजाओं को हराया। महाराज भगदत्त को जीतकर शत्रुओं से लड़ता लड़ता हिमालय पर चढ़ गया। इस प्रकार वह सब राजाओं को जीतकर नेपाल देश के राजाओं को भी परास्त किया। फिर हिमालय से नीचे आकर पृथ्वी के पूर्व की ओर धावा किया और वहां अंग बंग कलिंग सुंडिक मिथिला मगध कर्कखंड आवशीर योद्धा योध्य और अहिक्षेत्र आदि राजाओं को जीत करके अपने वश में कर लिया। इसके पश्चात उसने वत्स भूमि को जीता, फिर केवड़ा मृतिकावती मोहन पत्तन त्रिपुरी कोसला आदि पुरियों को अधीन कर लिया। फिर दक्षिण की तरफ प्रस्थान किया, बड़े बड़े महारथियों को परास्त किया। कृष्ण के साले रुक्मी के साथ कर्ण का घोर युद्ध हुआ, किंतु अंत में उसे भी इच्छानुसार कर देना पड़ा। फिर वह पांड्य देश श्रीशैल की ओर चला गया, केरल नील वेणुधारीसुत आदि अनेकों राजाओं से कर लेकर शिशुपाल के पुत्र को परास्त किया। उसके आसपास के राजा थे उन्हें भी महावीर ने अपने अधीन कर लिया। फिर अवंती के राजा को जीत करके वृष्णिवंशियों को अपने पक्ष में किया और पश्चिम दिशा को जीतना प्रारंभ किया। उस दिशा में जाकर यवन और बर्बर राजाओं से उसने युद्ध किया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब दिशाओं से सारी पृथ्वी जीत ली। इस तरह सारी पृथ्वी को अपने वश में करके जब धनुर्धर वीर कर्ण हस्तिनापुर में आया तो राजा दुर्योधन ने अपने भाई बड़े बूढ़े बंधु बांधवों सहित अगवानी करके उसका बड़ा विलक्षण सत्कार किया। बड़ी प्रसन्नता हुई, सारे नगर में घोषणा करवा दी कि कर्ण दिग्विजय करके आए हैं। कर्ण से कहा, कर्ण तुम्हारे जैसे मित्र की आज दिग्विजय की बात सुनकर हमारा मन हर्ष से फूला नहीं समा रहा है। तुमसे मुझे वह चीज मिली है जो मुझे भीष्म से नहीं मिली, द्रोण से नहीं मिली, कृपाचार्य से नहीं मिली, वाल्मीकि से नहीं मिली। वे सब के सब पांडव तथा दूसरे राजा तो अपने 16वें अंश के बराबर भी नहीं कर सकते। मैंने पांडवों का बड़ा भारी राजसु यज्ञ देखा था, तब मेरी इच्छा हुई कि मैं भी राजसु यज्ञ करूं, लेकिन उस राजसु यज्ञ को तुम पूरा कर सकते हो। दुर्योधन के इस प्रकार कहने पर कर्ण ने उससे कहा कि राजन, इस समय सभी नृपतिगण आपके अधीन है, आप याजकों को बुलाकर यज्ञ की तैयारी करवाओ और वैसे ही राजसु यज्ञ करो, उससे भी बढ़कर राजसु यज्ञ करो। दुर्योधन ने पुरोहितों को बुलाया, उनसे कहा राजसु यज्ञ आरंभ कर दीजिए और इसकी समाप्ति पर आपको यथेष्ट दक्षिणाएं दूंगा। पुरोहितों ने कहा, महाराज हमारी बात सुनिए, युधिष्ठिर के जीवित रहते हुए आप यह यज्ञ नहीं कर सकते, किंतु दूसरा एक यज्ञ है जो किसी के लिए भी निषिद्ध नहीं है, आप विधिवत उसे ही कीजिए। उसका नाम वैष्णव यज्ञ है और वह राजसु यज्ञ के समकक्ष का है, पर राजसु यज्ञ करने का आपको अधिकार नहीं है। ये वो वैष्णव यज्ञ हमें भी बहुत प्रिय है, उससे आपका बड़ा हित होगा, वो बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो जाएगा। दुर्योधन ने कहा, कोई बात नहीं, ऐसा ही करो। तब महामति विदुर और मंत्रियों ने दुर्योधन को सूचना दी, यज्ञ की सब सामग्रियां तैयार हैं, सोने का बहुमूल्य हल भी है, यज्ञ का नियत समय भी आ गया है। बस दुर्योधन ने यज्ञ आरंभ करने की आज्ञा दी, शास्त्र विधि से यज्ञ की दीक्षा दी। धृतराष्ट्र विदुर भीष्म कर्ण कृप द्रोण शकुनी गंधारी सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। राजाओं और ब्राह्मणों को आमंत्रित करके दूत भेजे गए, सवारियों पर बैठकर सब आने लगे। उनमें से एक दूत से दुशासन ने कहा, देखो तुम शीघ्र जाओ द्वैत वन में, और द्वैत वन में पांडवों के पास जो ब्राह्मण रहते हैं उन ब्राह्मणों को जाकर इस प्रकार से संदेश देना कि पांडवों को भी पता चले कि हम लोग भी एक बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहे हैं। उसने पांडवों के पास जाकर, ब्राह्मणों के पास जाकर ये सब बात बताई और कहा, महाराज नृपति श्रेष्ठ पृथ्वीपति महाराज दुर्योधन अपने पराक्रम से बहुत बड़ा राजाओं से धन प्राप्त करके एक महान यज्ञ करने जा रहे हैं। उसमें बहुत देश देशांतर के राजा लोग आ रहे हैं, ब्राह्मण वहां पर खूब आ रहे हैं। महामना कुरुराज ने मुझे आपकी सेवा में भेजा है और धृतराष्ट्र कुमार महाराज दुर्योधन ने आपको यज्ञ के लिए आमंत्रित किया है। आप उनका ये अभीष्ट यज्ञ देखने के लिए पधारे और अपने ब्राह्मणों को भी भेजे। दूत की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, अपने पूर्वजों की कीर्ति बढ़ाने वाले राजा दुर्योधन महायज्ञ के द्वारा भगवान का यजन कर रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता की बात है। हम भी उसमें सम्मिलित तो होते किंतु इस समय ऐसा किसी प्रकार संभव नहीं है, क्योंकि अब 13वां वर्ष लगने वाला है और हमें वनवास के नियम का पालन करना है। धर्मराज की बात सुनकर भीमसेन ने कहा, भीमसेन ने दूत से कहा, दूत दुष्ट बुद्धि दुर्योधन से कह देना कि 13वां वर्ष बीतने पर जब युद्ध रूपी यज्ञ होगा उस समय मेरे बल रूपी अग्नि के अंदर तेरा हवन किया जाएगा और तेरे 100 पुत्रों को, तेरे 100 भाइयों को उसी के अंदर भस्म होना पड़ेगा। भीम के सिवा अन्य पांडवों ने कुछ नहीं कहा। दूत ने भीम की बात दुर्योधन के पास जाकर ज्यों की त्यों पुरोस दी कि ऐसी बात हुई है। अनेक देशों से प्रधान प्रधान पुरुष और ब्राह्मण हस्तिनापुर में आने लगे। धर्मज्ञ विदुर जी ने दुर्योधन की आज्ञा से सभी का स्वागत किया। खाने पीने की सामग्री, सुगंधित मालाएं, वस्त्र देकर संतुष्ट किया और सबके लिए अच्छे घर बनवाए, बहुत सा धन दिया, यज्ञ हुआ, सब लोग वहां से विदा हो गए। फिर वह भाइयों तथा कर्ण तथा शकुनी के सहित हस्तिनापुर लौट आया, हस्तिनापुर के पास यज्ञ किया आ गया। इस प्रकार वन में पांडव लोग ब्राह्मणों के साथ रहते थे, इंद्रसेन आदि सेवक भी उनके साथ रहते थे, पांडवों के साथ। और जिस मार्ग में शुद्ध अन्न और स्वच्छ जल का सुविधा का प्रबंध रहता वहां पर वे रहते रहते काम्यक वन में पांडव लोग पहुंच गए। इधर तो इनका यज्ञ हो गया, इधर ये काम्यक वन में पहुंच गए।
श्रीमन नारायण नारायण।